नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 अप्रैल से 2 मई तक हिमाचल प्रदेश के 6 दिवसीय प्रवास पर आ रही हैं। वे 27 अप्रैल को शिमला पहुंचेंगी। इसके लिए राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजधानी शिमला में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। डीआईजी साउथ रेंज अंजुम आरा ने बताया कि शिमला शहर की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। उन्होंने बताया कि जहां भी राष्ट्रपति का कार्यक्रम निर्धारित है, वहां वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। अंजुम आरा ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश आने वाले सैलानियों के लिए किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, केवल राष्ट्रपति की मूवमेंट के दौरान ही अस्थायी तौर पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने आज लोकभवन शिमला में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के बैच 2025 के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के साथ संवाद किया। उन्होंने अधिकारियों को ईमानदारी, समर्पण और जनसेवा की भावना को सर्वोपरि रखते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने सुशासन को मजबूत करने और जनसेवाओं से संबंधित योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने में सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए या सेवा अवधि के दौरान मृत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के शेष 30% बकाया को तत्काल जारी करने के आदेश दिए हैं। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हार के डर से बहाने बनाकर नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव को टालने की कोशिश की है। आज नाहन में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में पंचायती राज और नगर निकायों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं लड़ना चाहती है। सुरेश कश्यप ने कहा कि अपने 3.5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने प्रदेश के लोगों को केवल परेशान करने का काम किया है और हजारों की संख्या में संस्थान बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि नगर निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस की हार निश्चित है।
जिस प्रकार से सरकार लगातार पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव को डेफर करती रही, लेकिन अंततः स्थानीय निकायों की घोषणा हुई है, ऐसी क्या समस्या है या ऐसा क्या डर है कि सरकार इन चुनाव से भी बचना चाह रही? इनको इस समय लग रही है कि अगर हम सिंबल के ऊपर चुनाव करवाएंगे तो उससे तो स्थिति एकदम स्पष्ट हो जाएगी, इसीलिए ये बचना चाहते हैं और ये इस बात को शो करेंगे कि जो जीता उनका जीत। लेकिन आज की जनता बहुत जागरूक है, बहुत समझदार है।
प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जैनब चंदेल ने आरोप लगाया है कि महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भाजपा महिलाओं को गुमराह कर रही है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इसके विरोध में महिला कांग्रेस प्रधानमंत्री को 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजकर 543 लोकसभा सीटों के आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग करेगी। जैनब चंदेल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार की मंशा महिलाओं को आरक्षण देना है तो मौजूदा 543 लोकसभा सीटों के आधार पर ही आने वाले लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए।
10 लाख हम लोग ये जो पोस्ट कार्ड है पूरे भारतवर्ष से प्रधानमंत्री जी के पास भेजेंगे। प्रधानमंत्री जी हमारी आवाज को सुनिए, नारी को आप सशक्त करने की बात करते हैं, आप सशक्त कीजिए और महिला आरक्षण जो ये बिल पास हुआ है इसको अभी 27 में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आप लागू कीजिए। नारी का सम्मान केवल नारों से नहीं होता, वो परिलक्षित भी होना चाहिए, वो दिखाई देना चाहिए धरातल पर। और भारतीय जनता पार्टी है, कहती कुछ है करती उसके विपरीत है।
केंद्र व राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों और 27 वर्ष तक के युवाओं के लिए अत्याधुनिक इंसुलिन पंप निशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। बाजार में इस इंसुलिन पंप की कीमत 3 लाख से अधिक है। टांडा मेडिकल कॉलेज के एंडोक्रिनोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विनय डोगरा ने बताया कि इंसुलिन पंप से मरीजों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा और इसका इस्तेमाल बेहद आसान है।
हम जो टाइप 1 डायबिटीज से अग्रसित बच्चे हैं या अडल्ट्स हैं 27 इयर्स ऑफ एज तक के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद हिमाचल गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से थ्रू NHM नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू इन पेशेंट्स को हम एक डिवाइस दे रहे हैं जिसको हम इंसुलिन पंप बोलते हैं। सो इंसुलिन पंप एक डिवाइस है जिससे जो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको इंसुलिन दिया जाता है। तो ये पेशेंट्स के लिए सुविधाजनक हो जाता है इंसुलिन लेना।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।